रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अतुलितमलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि। निर्णय हो गया कि भाई चाहे विभीषण किसी भी दृष्टि से आए, हम उसको स्वीकार तो करेंगे। सुग्रीव वो शरण में आया है, उसकी भाषा शरणागत की भाषा है। वो कहता है हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं। शरण में आए हुए व्यक्ति का त्याग करना ये बड़ा भारी पाप है, और जिसमें फिर मैं सुग्रीव, देखो मैं तो यहां जीवों में शरणागति का भाव ही तो फैलाने के लिए अवतार लिया हूं। यदि आज विभीषण का त्याग कर दूंगा तो फिर उसके बाद दुनिया में कोई मेरे शरण होगा ही नहीं। इसलिए शरणागत के सारे के सारे गुण देखने की बात नहीं है, कोई कैसा भी भाव है, लेकिन यदि वो शरणागत है, भीतर में भावना शरणागति की है, तो उसका तो त्याग हम कर नहीं सकते हैं। सब बड़े प्रसन्न हो गए, हनुमान जी वगैरह सब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, और इसलिए प्रसन्न हो गए कि भाई हम जैसे भी हैं भगवान के शरण हैं। आज भगवान ने अपने हृदय का उद्गार प्रकट किया है विभीषण के बहाने से, तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, बल मिल गया। ये सब बंदर गए और सुग्रीव को नहीं, विभीषण जी को बड़े प्रेम से आकाश से नीचे उतरवा करके और अपने साथ लिए और आदर किया। आइए आइए विभीषण जी, आइए महाराज ने आपको जो है अंदर आने के लिए स्वीकृति दी है। विभीषण आया जहां राम जी महाराज विराजमान थे, उनको देखा, वो दूर से देखा दोनों भाइयों को, इतना आनंद में डूब गया। वो देख करके बस आंख उसकी फटी की फटी रह गई, स्तब्ध हो गया। रहु ठटुकी, एक पल पल रो, एक टक पल रो, एक टक देखने लग गया भगवान। क्या सुंदर भगवान की छवि है, लंबी लंबी उनकी भुजा है, लाल लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, श्याम शरीर है, और चेहरे पर नेत्रों में ऐसी कृपा बरसती है, प्रणत भय मोचन, माने शरणागत के भय को दूर करने वाले, नयन नीर पुलकित अति गाता। और सिंह कंद आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। उनका मुख इतना सुंदर है अमित कामदेवों के मन को भी वो मोह लेने वाला है। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप देखा और भगवान के स्वरूप को मन में बसा करके उनकी कृपा को ध्यान में रखते हुए नैनों में नीर ला करके मन को धैर्य करते हुए कहा, महाराज नाथ दशानन कर्मे भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। ध्यान से सुनना, ये दो शब्द दिए विभीषण ने। कहा कि महाराज मैं दशानन का भाई हूं। दशानन, ये दशानन शब्द है जटायु से सुना हुआ, भगवान के छाती में रड़क रहा था, ये कौन दशानन है, कैसा दशानन है। तो क्या महाराज उसका मैं भाई हूं। अच्छा, और निश्चर ही न करूं मही भुज उठाए पनकीन। आपने प्रण किया है मैं निशाचरों के वंश को जो है नष्ट कर दूंगा। वो निश्चर वंश है महाराज मेरा। जो दोनों बातें आपने मन में ठान रखी हैं कि दशानन मिले तो उसको मारूंगा और जितने निशाचर हैं सबको मारूंगा, वरना दोनों ही बातें मेरे में देखो बाप। नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे देव रक्षक महाराज, मैं निश्चर वंश में जन्म लिया हूँ और दशानन का भाई हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। तुमने जीवन भर पुण्य का काम किया होगा तो चलेगा। क्या हो गया दशानन का भाई, दशानन तो हो नहीं ना। कि नहीं महाराज, सहज पाप प्रियताम सदेहा जथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू को जैसे अंधकार अच्छा लगता है, इसी प्रकार से मैंने मेरे जीवन में तमोगुणी काम किया है, पापी पाप किया है महाराज। पाप मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, इतने पापी हो तुम तो मेरे पास क्यों आए भाई। पापी व्यक्ति तो मेरे पास नहीं आता। तो श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्रायारत हरन शरण सुखद रघुवीर। बस महाराज, सत्संग किया मैंने, सत्संग के कारण से आपके पास आ गया। कि सत्संग कहाँ किया तुमने, आप देखो, सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलू कई तम पर नेहा। जीवन में मैंने पाप ही पाप किया, पुण्य का काम किया तो एक ही किया है कि सत्संग। वो एक सत्संग करना उसके लिए कितना लाभप्रद हुआ, सारे पाप सर और खत्म हो गए। जैसे लाखों मण यदि रुई है, एक दिया सलाई की चिंगारी लगती है तो सब खत्म हो जाती है रुई। ऐसे ही सत्संग करने पर, उसमें भी क्या हुआ, श्रवण सुजस सुनी आयो। आपका मैंने कानों से चरित्र सुना है, यश प्रभाव सुना है महाराज, अभी काम में भी नहीं लिया मैंने। मैंने तो केवल सुना है, श्रवण सुजस सुनिया। क्या सुना भाई, प्रभु भंजन भव भीर। आप जो है संसार का जो दुख है उसको दूर करने वाले, ये हमने सुना है। और जो शरण में आया हुआ होता है उसको सुख देने वाले हो, उसकी पीड़ा को दूर करने वाले हो, आरती हरण। इसलिए महाराज त्राहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कितना विभीषण के इस प्रसंग से अपने को बल मिलता है। अपने तो मन में सोचते हैं कि इतना इतना कुछ होगा तो भगवान कोई स्वीकार करेंगे। इसने कहा श्रवण सुजस सुनी आए। जीवन में कोई चीज मैंने काम में ली हो ऐसी बात तो है नहीं, कहने में तो यही कहते हैं। लेकिन देखो उनका आचरण कितना श्रेष्ठ था कि हनुमान जी महाराज तो अपने हिसाब से जा रहे थे, विभीषण जी ने राम राम का उच्चारण किया। राम राम का उच्चारण किया, तुलसी का घर में पौधा था, राम जी का वहां पर चिन्ह था, शस्त्र के चिन्ह थे, व्यवहार तो उसका श्रेष्ठ था ही ना। लेकिन जो आदमी जितना भगवान में लगा हुआ होता है उसको अपना भजन साधन उतना ही कम मालूम देता है। एक कहावत है कि जिसके पास रुपया जितना ज्यादा होता है उसको अपना रुपया कम मालूम देता है, लोभी आदमी को। ये कह दे साहब आपके पास तो 10-15 करोड़ रुपया है, आपकी क्या कमी है। वो देखता है कि मेरे पास तो 10-15 करोड़ रुपया है लेकिन मेरे से आगे कितने लोग हैं। अपने से आगे वालों को देखता है रुपया वाला, देखना चाहिए रुपए पैसे वाले को, अपने से पीछे वालों को, जिनको बिचारों को एक समय रोटी भी नहीं मिलती है, वो भी तो बिचारे इसी धरती पर रहते हैं। और एक मैं हूं जो 10-15-20 करोड़ का मालिक हूं। और वो देखता है जिसके पास हजारों करोड़ होता उधर दृष्टि रहती है, वो देखता है मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे ही कल्याणकामी महापुरुष होते हैं, भगवान के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उनको भी अच्छे अच्छे महात्माओं में जो विशेषता दिखती है वो अपने अंदर नहीं दिखती, ये होनी चाहिए। लोभी आदमी का ये उदाहरण लेना चाहिए कि उसके पास कितना ही करोड़ों रुपया हो पर उसको कम मालूम देता है, कम मालूम कि मेरे पास कम है। हजारों करोड़ जिसके पास रुपया है, हजारों करोड़, वो आदमी भी रात दिन रुपए में लगे हुए हैं। पूछा कि क्यों लगे हुए हैं, कि इनके पास रुपए की कमी नहीं है तो ये होड़ में लगे हैं कि हमारा नाम विश्व में सबसे पहले धनी आदमी में आ जाए, बस इसके लिए रात दिन दौड़ धूप है, गिनीज बुक में हमारा नाम आ जाए, सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन की ये आदमी, बस इसके लिए दौड़ धूप होती है। तो वो अपने से आगे वालों को देख करके अपने में धन की कमी मानता है। इसी प्रकार से भजन साधन करने वाले को अपने से आगे जो महापुरुष हैं उनका जीवन देख करके चलना चाहिए। ओहो ऐसे ऐसे महात्मा, तो ये विभीषण जी महाराज अपने को शिक्षा दे रहे हैं कि मैं तो महाराज कुछ जानता नहीं हूँ, हनुमान जी हमारे वहाँ आए थे, हनुमान जी ने हमको आपका यश सुनाया और उसके बाद आपके पास आ गया। देखो लोग कह सकते हैं, कहा भी है भगवान से, कहा है कि महाराज ये विभीषण है ना आपका भेद लेने आया है कि नहीं नहीं नहीं, तो ये इसलिए आया है कि सीता जी को इसने रावण ने रख लिया ना, तो फिर इसने विचार विरोध किया। तो महाराज विरोध किया तो जिस दिन सीता का हरण हो करके आया लाया है ये, तो पता तो चली गया, उसी दिन वो यदि रावण को छोड़ देता और छोड़ करके और फिर जो है आपके पास आता, तब तो हम मानते महाराज कि ये रावण के अत्याचार से, रावण के पाप से खिन्न होकर आपके पास आया है। ये तो महाराज बहुत बाद में आया है, इसको पता चल गया ना कि आपकी अब शक्ति क्या है। एक हनुमान चला गया, एक आदमी, एक बंदर ने लंका को जला दिया, निर्भय होकर के वो बैठा रहा, रावण के पुत्र को मार दिया, मेघनाद आदि का कोई बस नहीं चला, तब ये देखता है कि अब ये रावण मारा जाएगा तो अब हम दोस्ती कर ले राम से कि राज्य हमको मिल जाए। ये तो महाराज राज्य लेने की इच्छा से आया है, तो ये कोई रावण का विरोधी बनकर के थोड़ी आया है, होता तो वो पहले ही आ जाता आपके पास। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि सीता जी को ये पहले लेकर आ जाता, पहले ही विरोध करके आता तो राम जी से कहां मिलता, कोई पता था इसका, कहां राम जी हैं, कौन राम जी हैं, कुछ पता था नहीं। भगवान में आस्था होती है वो शुरू शुरू में नहीं होती है, सुनकर के ही होती है। जितने भी अपने लोग सुनते हैं तो बचपन में पैदा हुए तब थोड़ी जानते थे भगवान क्या होता है क्या नहीं, कुछ पता है। सुनते 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 भावना पक्की होती है। तो विभीषण जी ये बात बताते हैं कि सत्संग करो और सत्संग करके भगवान का प्रभाव हृदय में बैठाओ। सीता जी का रावण के द्वारा हरना विभीषण को उस समय भी अभीष्ट नहीं था, न होते हुए भी वो भगवान के पास जाए तो कैसे जाए, कुछ भगवान के प्रति प्रभाव जमे ना मन में, तो ये प्रभाव हनुमान जी के द्वारा जमा। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में गए और फिर अपने को बंदर रूप में बताया और फिर हनुमान जी ने इतना प्रभाव बताया तब जाकर उनके, अरे दूत में इतना प्रभाव है तो फिर भगवान में कितना प्रभाव होगा, उसके हृदय में आपका प्रभाव अंकित हुआ है तब वो आपके पास आया, इसका इस समय आना श्रेष्ठ है। यदि आप लंका में प्रवेश करते और युद्ध करना चालू कर देते और रावण जिस समय देखता कि मेरी सेना खत्म हो रही है उस समय में रावण को छोड़ करके आप में आकर मिलता तब आप कह सकते थे कि भाई ये राज्य की प्राप्ति के लिए आया है। अब देखो आप इतनी बड़ी सेना लेकर के समुद्र के किनारे आ गए हो तो ये महाराज इसका यही आना श्रेष्ठ है, यही आना श्रेष्ठ है। श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, मैं तो महाराज आपका सुयश सुन करके आया हूँ, शरणागत को आप स्वीकार करने वाले हो इसलिए महाराज त्राहि माम, मुझे आप बचाओ बचाओ। भगवान के सामने दंडवत किया, बड़े बड़े प्रसन्न हो गए भगवान और बड़े प्रेम से उसको उठाया। अब वो बड़ा दीन वचन सरल वचन बोल रहा था, भगवान ने उसको अपने छाती से कलेजे से लगाया और भगवान भी बैठ गए और अनुज भी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए और पास में बैठा करके और कहने लगे क्या कहू लंकेश सहित परिवार, ये कहू लंकेश सहित परिवार कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। हे लंकेश, भगवान ने विभीषण नाम से संबोधन किया ही नहीं, हे लंकेश। और दूसरी बात यह भी है कहू लंकेश सहित परिवार, लंकाकार जो राजा रावण बना हुआ है प्रवास में ये विभीषण के लिए ठीक बैठता है। कहू लंकेश, तुम अपने परिवार सहित वहां कैसे रहते होंगे, क्योंकि वो कुशल तुम्हारा वहां कैसे रहता होगा, कुशल क्षेम कैसे होगा, क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं, कुठार ठोर आपा बोला मारवाड़ी में आ ठोर कोनी, आ कुठोर है अच्छी जगह कोनी आ, तो ऐसे ही कुशल कुठार वास तुम्हारा। अरे लंका के अंदर तुम कैसे रहने लग गए भाई, खल मंडली बसरू दिन राती, खल मंडली के बीच में रह रहे हो और वहां तुमने मेरा भजन कैसे कर लिया, वहां पर मेरा सुजस कैसे सुन लिया, वहां पर तुम अपने धर्म में कैसे रह गए, वहां आपने सीता का विरोध सीता के हरण का विरोध कैसे कर लिया, सर्वशक्तिमान उस समय रावण उस रावण के सामने विरोध की वचन क्यों निकाले, कैसे तुम्हारे द्वारा ये धर्म निभा, ये मैं बात जानना चाहता हूँ। मैं जानू तुम्हारी सब रीति अतिनय निपुण भाव अनीति, तुम्हारे भीतर में कोई भी अनीति का भाव नहीं है, तुम परम नीति संपन्न हो, पर तुम रहते कैसे थे ये तो बताओ। तो विभीषण जी बोलते हैं बरुभल बास नरक करता था दुष्ट संग जनी दे, आपका कहना बिल्कुल ठीक है महाराज, इस संसार में विधाता हमको दुष्टों की संगति न दे, चाहे हमको नरक में डाल दे, नरक में रहना अच्छा है, क्योंकि नरक में दुख पाने पर हमको हमारे पाप किए हैं उनसे घृणा होती है, अरे ये पाप किया तो फल भोगना ही पड़ेगा, ये किया तो फल भोगना ही पड़ेगा। बरुभल बास नरक करता था, लेकिन दुष्टों के संग में हमको पाप है ये मालूम ही नहीं देता है, इसलिए दुष्टों के संग की बजाय नरक में भेज देना बढ़िया है महाराज, मैं तो आपके चरण कमलों का दर्शन किया हूँ, अब जाकर मेरी जान में जान आई है और आपने अपना समझ करके मेरे पर कृपा की है। ओहो महाराज, इतना तो मैं समझ भी नहीं सकता था। मेरे तो चित्त में अब एक बात बैठी है कि इस जीव का तब तक कुशल नहीं हो सकता जब तक कि ये जीव आपका होकर के भजन ध्यान न करे। जब लगी भजतन राम कहूं शोक धाम तजी काम, संसार की इच्छाओं को छोड़े, क्योंकि जितने शोक हैं वो कामना से पैदा होते हैं। ऐसा कोई दुख नहीं है कि जिस दुख के नीचे कामना नहीं टिकी हुई हो, कामना से ही दुख पैदा होता है। कितने भी दुख हो तो सारे शोक का खजाना की कामना है, संसार की कामना। इन संसार की कामनाओं से पिंड छुड़ा करके जब तक ये जीव आपका भजन नहीं करेगा तब तक इसको स्वप्न में भी कुशलता नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही उपाय कर ले। तो साहब ये बड़े भयंकर हैं फिर तो, काम 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 क्रोध लोभ आदि बड़े भयंकर हैं। हाँ बड़े भयंकर हैं ये मानते हैं, परंतु महाराज ये कब तक रहते हैं उस हृदय में? ये तभी बहुत ध्यान से सुनना, विभीषण बोलता है ये काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट खराब चीजें हैं, ये कब तक रहती हैं? जब तक धनुष बाण लेकर के आप हृदय में नहीं रहते, अर्थात धनुष बाण लिए हुए भगवान का ध्यान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज ये धनुष बाण लिए आपके क्या काम आएंगे। आप तो महाराज किसी प्रकार से मरने वाले नहीं हो, आपको कौन मारेगा जो आप अपनी रक्षा के लिए धनुष बाण रखते हो? ये धनुष बाण आपके रक्षा के लिए नहीं है महाराज, ये तो हमारी रक्षा के लिए। क्यों? देखो महाराज, जिस हृदय में आप विराजमान हो उस हृदय में ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मच्छर है। मच्छर माने मात्सर्य, एक दूसरे को देख करके चिढ़ना, मतलब इनकी उन्नति कैसे हो गई, इनका नाम कैसे हो गया, मेरे मन में जलन हो गई, ये क्या है? ये मत्सर दोष है। तो ये खल है, ये दुष्ट है, इनको मारने के लिए आपका धनुष बाण है महाराज, इनको काम में ले। भाई हम तो हमारे दुष्टों को नहीं कि महाराज आप दूसरों की, आपका तो कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता ना, कोई भी दुष्ट है, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे और हो, ये धनुष बाण तो आपने हमारे ही दुष्टों को मारने के लिए धारण कर रखा है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। विभीषण ने कहा कि तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप काय सायक कटि भाथा। भाथा माने तरकस, कमर में तरकस बांधते हैं, धनुष बाण आप लेते हैं, बस जब तक धनुष बाण लेकर के आप हमारे हृदय में नहीं आते, बस तभी तक ये काम क्रोध लोभ आदि घूमते हैं। आप देखते होंगे घरों में ये चूहे बहुत थरथर थरथर बहुत परेशान करते हैं। एक बिल्ली यदि घूमते आ जाए, चूहों का पता ही नहीं चल जाने कहाँ छिप जाते हैं, कहाँ चले, वो खूब सूंघती है इधर उधर, बिल्ली को चूहा मिलता ही नहीं, छिप जाते हैं। ऐसे ही महाराज ये काम क्रोध लोभ आदि कहाँ चले जाते हैं जब आपका ध्यान होता है, पता ही नहीं चलता। नहीं तो महाराज ये ममता रूपी एक ऐसा अंधकार है जो तरुण तमी है। ममता रूपी एक बहुत घोर अंधकार है और इस अंधकार में राग द्वेष उल्लू सुखकारी। अंधकार में राग और द्वेष रूपी जो उल्लू है उन उल्लुओं को ये अच्छा लगता है। तब फिर क्या करो भाई, उल्लुओं को भगाना हो तो क्या करो, प्रकाश कर दो। देखो दिन में उल्लू आप उड़ते हुए देखते ही नहीं होंगे, दिन में उल्लू नहीं उड़ता। यदि कहीं बाई चांस उड़ भी जाए तो इधर उधर टक्कर खाएगा, वो दिखेगा नहीं उसको। और रात में इतना साफ दिखता है उसको। तो जब तक ममता रहती है तो राग द्वेष खूब बढ़े रहते हैं, खूब काम करते हैं ये राग द्वेष। ममता में राग द्वेष बढ़े रहते हैं। और जब आपका प्रताप रूपी सूर्य उदित होता है तो इनमें किसी का पता ही नहीं चलता। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, आपका प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं होता तभी तक ये उल्लू दौड़ते हैं। आपका सुयश सुन ले, आपका प्रभाव सुन ले, आपका गुण सुन ले, आपकी महिमा सुन ले, तो फिर ये राग द्वेष रूपी उल्लू भग जाएंगे, ममता का अंधकार भी खत्म हो जाएगा। देखो सूर्य उदित होने पर अंधकार खत्म होता है, राग द्वेष एक ये उल्लू भग जाते हैं। ऐसे आपका सुयश सुन ले, आपकी बातें सुन ले, आपका प्रभाव सुन ले, तो फिर संसार में ममता माने मेरापन है वो आप में लगाएगा ये जीव। और आप में जब ममता हो जाएगी तब राग द्वेष उसके रहेंगे नहीं। अब महाराज बड़ा आनंद हो गया, आपने मेरे सब भय मिटा दिए और आपके चरण कमलों के दर्शन करने मात्र से मेरे सारे भय मिट गए। महाराज आप बड़े कृपालु हैं, जिसके ऊपर आप कृपा करते हैं उसको इस संसार के अंदर आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक तीन प्रकार के जो शूल है वो सब समाप्त हो जाते हैं जिस पर आप कृपा दृष्टि से देखते हैं। आध्यात्मिक दुख क्या होता है, मन में चिंता होती है क्या खाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, और कोई घटना हो जाती है तो दुख हो जाता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। कोई मर जाए तो दुख होता है, ये आध्यात्मिक शरीर में दुख होता है। और आदि दैविक क्या होता है कि जैसे कोई अकस्मात दैवी घटना घट गई, कोई चल रहे है और जोर से आंधी आई, वृक्ष गिरा तो सिर में चोट लग गई थी, आदि दैविक दुख है। और आदि भौतिक क्या है, शरीर में बीमारी हो जाए, ये आदि भौतिक दुख है। तीन प्रकार के दुखों से ग्रस्त सारे प्राणी मिलते हैं। किसी के शरीर में बीमारी नहीं है तो उसके मन में बीमारी है, हर शोक उसके मन में होते हैं। किसी के हर शोक नहीं होते तो शरीर में कुछ है, किसी के क्या माने इस संसार में कोई रहेगा तो तीनों प्रकार के दुख से रहित तो वही रहेगा जिसको या तो आत्मा का ज्ञान हो गया या जो आपके चरणों के अंदर शरण में आ गया। अब महाराज मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। अपने जीवन में महाराज मैंने तो कोई शुभ आचरण किया ही नहीं, कोई शुभ आचरण नहीं किया। निश्चर हूं मैं महाराज और अधम स्वभाव वाला हूं, कोई मैंने ऐसा काम किया नहीं। आपका स्वरूप तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी नहीं उतरता, वो प्रभु आपने प्रेम पूर्वक मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या सौभाग्य की आनंद की बात होगी। महाराज आज आपके इस स्वरूप को देख रहा हूँ, जिन स्वरूप को भगवान शंकर अपने हृदय में रखा करते हैं, इन दोनों चरणों में भगवान शंकर भी मन लगाए रखते हैं, उसको मैं इन नेत्रों से देख लिया। महाराज भगवान कहने लगे विभीषण जी हम आपको अपना स्वभाव बताते हैं, देखो हमारे स्वभाव को एक तो गरुड़ जी एक तो ये काकभूषुंड जी जानते हैं और भगवान शंकर जानते हैं। जान भुसुंडी शंभु गिरी जाओ और पार्वती भी जानती है, सब हमारे स्वभाव को जानते हैं। देखो हम उस स्वभाव के अनुसार आपको बोलते हैं कि कोई भी प्राणी कैसा भी वो हो, चर आचर सारे प्राणियों से द्रोह रखने वाला, सबसे लड़ाई झगड़ा कलह करने वाला और जो है वो सबकी नजरों में गिरा रहने वाला, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तजी मद मोह, अंदर कोई कपट छल नहीं होना चाहिए, छल कपट छोड़ करके और वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं तत्काल उसको जो है संत बना देता हूँ, श्रेष्ठ पुरुष बना देता हूँ। गीता जी में कहा ना कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव स मंतव्य है सम्यक व्यवसित हो क्षिप्रम बहुदी धर्मात्मा करऊ सद्यते ही साधु समाना। मेरे पास आने में बाधा क्या है? ये एक तो पारिवारिक संबंध है और एक ये वस्तुगत संबंध है। जननी जनक बंधु सूत्र दारा ये छह संबंध होते हैं वास्तव में। माता पिता का संबंध, माता पिता का संबंध और भाई भौजाई का संबंध और स्त्री पुत्र का संबंध, ये दो दो का जोड़ा है ना, तो ये छह संबंध में आदमी फंसता है। परिवार इतना ही है, माता पिता भाई भौजाई और स्त्री और पुत्र, ये छह है। जननी जनक बंधु सूत्र दारा, अब बंधु में बंधु माने भाई, भाई के घर वाले भाई भतीजे सब आ गए उसमें। सूत्र दारा ना, चाहे अपने दारा हो अपना पुत्र हो और चाहे भाई का बेटा हो और चाहे भाई का भाई की स्त्री हो, ये इतना ही परिवार होता है। इसमें आदमी फंसा हुआ रहता है और शरीर धन मकान जमीन जायदाद इसके अंदर जो ममता रखता है वो तो भाई मेरे को कैसे प्राप्त होगा, पर इनकी ममता का जो धागा है उसको बटोर करके समेट करके और मेरे चरणों में आकर वो उसकी बट मान लेता है। जैसे ये धागा तो बहुत कच्चा है लेकिन ये चौलड़ा पांचड़ा करके इसको बट 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 देते हैं तो बहुत मजबूत हो जाता है, उसको बट लग जाती है। ऐसे ही सबके ममता ताग इन सबके साथ जो ममता रूपी कच्चा धागे से संबंध है, देखा जाए शरीर को भी मैं मानता हूँ, मेरा मानता हूँ, परिवार को मेरा मानता हूँ, ये कच्चा धागा है, ये एक दिन कट टूट जाएगा। पर इन सब कच्चे धागे को लेकर के एक पक्का डोरा बनाया जाए। एक पक्का डोरा क्या बनाया जाए? वो पक्का डोरा यही बना जाए कि इनको सबको बांध बांध बड़ी डोरी, इनको जो है आपस में गूंथ करके और मेरे चरणों के साथ इन सबको बांध देगी। धन भी जैसे अभी लेख में आया, ये सारा परिवार भगवान का, मैं भी भगवान का, धन भी भगवान का, सबको भगवान का बना ले, मेरा मान ले बस, फिर उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो समदर्शी होता है, उसकी अपने कोई इच्छा नहीं होती, उसके मन में कभी हर्ष नहीं होता, कभी शोक नहीं होता, कभी भय नहीं होता। ऐसे सज्जन महापुरुष होते हैं, वो मेरे हृदय में वैसे ही बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जैसे लोभी आदमी होता है उसको अपना धन होता है वो कम दिखता है, दूसरे का धन ज्यादा दिखता है। ऐसे ही ऐसे महापुरुष होते हैं, वो अपने अंदर भक्ति नहीं देखते, दूसरों में वैसे देखते हैं। और लोभी आदमी जैसे हरदम धन का चिंतन करता, हरदम हरदम बस केवल धन कैसे मिले इसी बात में लगा रहता है, ऐसे ही वो मेरे हृदय के अंदर बसे रहते हैं महापुरुष। और तुम्हारे जैसे तो संत मुझे बहुत ही प्रिय है, और विभीषण जी तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैंने ये शरीर धारण किया है। धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रहे, और हमारा कोई काम नहीं। जो मेरी सगुण उपासना करते रहते हैं और अपने शरीर से मन से वाणी से दूसरों का हित करते रहते हैं, अपनी नीति के अंदर चलते हैं और अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। और जो ब्राह्मणों के साथ स्नेह रखते हैं आदर रखते हैं वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं। हे लंकेश, देखो लंकेश से ही भगवान ने उपदेश चालू किया और लंकेश से ही भगवान अपनी बात पूरी कर रहे हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, सारे जितने मैंने महापुरुषों के लक्षण बताए ये सब तुम्हारे अंदर घटित होते हैं। तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो, बहुत ही प्रिय हो। वहां पर बैठे हुए जितने बंदर थे सब बंदर देखने लगे कि अरे ये इतने प्रिय हैं विभीषण जी, तो हमको तो जाने भगवान कितना बड़ा मानते होंगे, कितना प्रेम देते होंगे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहई जय कृपा बरूथा। सब जय जयकार, वाह महाराज जय हो आपकी, जय हो जय हो। विभीषण जी को आपने कहा हम तो महाराज आपके लिए, अब उनके मन में क्या आया होगा वही जाने, पर उनके मन में उत्साह आया, अरे इतने दयालु भगवान विभीषण जी। तो एक बार हमने तो पूरा का पूरा जीवन ही इनके लिए लगा दिया, इन्हीं के लिए सीता जी की खोज में चले, हमने हमारे जीवन की परवाह नहीं की। हमको तो जाने कितना चाहते होंगे, विभीषण को तो बोल दिया, हमको बोले नहीं, लेकिन चाहते कितना है भगवान। ओहो राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। वाह महाराज आप कृपा के सागर हो महाराज। विभीषण जी महाराज भगवान की वाणी सुनते रहे और ऐसे वो कानों में अमृत का काम करने वाली वाणी थी, उनके तृप्ति नहीं हुई। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हृदय में प्रेम समाया नहीं। आप देखो विभीषण जी क्या कहते हैं, महाराज आपने तो मुझे कहा कि समदर्शी इच्छा कछु नाही और सकल प्रकार तुम्हें तुम सकल गुण तोरे, लेकिन महाराज मेरे मन में तो ऐसा आ रहा है महाराज कि मेरे तो इच्छा थी पहले। क्या महाराज आप तो अंतर्यामी हो, सब पता है, पूरा कछु प्रथम वासना रहे, मेरे पहले मन में वासना थी क्या कि मुझे लंका का राजा मिले, लंका का राज्य मिले, मेरे मन में वासना थी ये। लेकिन आपके चरण कमलों में प्रेम होते ही है, प्रेम की नदी के अंदर ये वासना तो एक दिन का कचरे के समान थी, बह गई। प्रभुपद प्रीति सरित सो बह। अब कोई कहे कि जब वासना थी तो भगवान ने कैसे कह दिया कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, तो भगवान ये कहना चाहते हैं तुम अभी मेरे सामने आओ ना, अभी अभी तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है। देखो साधक के लिए ये प्रसंग एक हमको साधना के लिए संकेत देता है कि भगवान की भक्ति में जिस समय में वो तल्लीन रहे उस समय ये कभी न माने कि मेरे अंदर ये दोष है, दोष है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। अरे भगवान है ना हमारे चित्त में बसे हुए, जिनका नाम हमारे होठ पर, हमारे में कोई दोष नहीं है, अपने में निर्दोषता की स्थापना करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने में दोष मानते हुए साधन भजन करते हैं, दोष मानते हुए हमारे में ये दोष है और अब भगवान दूर करो, कहते ऐसा नहीं हमारे में दोष है ही नहीं। कैसे नहीं दोष है, हमको कोई जरा सा कुछ बोल दे तो हमको तो तेजी आ जाती है, कोई हमारी निंदा करता है तो बुरा लगता है, हम जो है कैसे कह देंगे निर्दोष है। इस समय भगवान का ध्यान करते हैं ना, इस समय कोई दोष नहीं है। तो जो दोष एक समय में नहीं है तो वो किसी भी समय में नहीं है। आत्मा की दृष्टि से विचार करना चाहिए, मैं भगवान का अंश, भगवान में कोई दोष नहीं तो मेरे में कहाँ दोष है। तुम वो क्रोध क्यों आता है, कह नहीं ना वो क्रोध हमको नहीं आता है, हमको आता ही नहीं है क्रोध आता है तो और जगह आता है, इसका सदुपयोग भी करना चाहिए, इसका दुरुपयोग भी न हो इसका ध्यान रखना चाहिए, इस बात का दुरुपयोग भी न हो। जैसे बिजली है बहुत काम की है, देखो प्रकाश करती है, हवा करती है, सब करती है, लेकिन खुला तार और यूं जाके हाथ लगा देंगे तो भी मर भी जाएंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे तो मर जाएंगे। ऐसे ही अपने में निर्दोषता को स्थापित करना ये बिजली का सदुपयोग है। इन घमंड करेंगे ना ये क्या है दोस्त, तो सब शरीरों में होता है, हमारे में थोड़ी होता है। ऐसे यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसका नुकसान भी बहुत हो जाएगा। लेकिन ये प्रसंग ऐसा नहीं है। शरणागत जो होता है वो अपने में शरणागति का अभिमान नहीं करता, इसलिए बेचारा विभीषण कहता है कि उर कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब महाराज आप हमको ऐसी शक्ति दो कि आपकी भक्ति में लग जाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी वासना थी ना क्या लंका का राजा बनने की, तो ठीक है। देखो जब भक्त है वो भगवान की भक्ति में लगता है तो उसकी वासना भगवान में चली आती है, उसकी इच्छा भगवान में चली आती है। भगवान ने कहा दावा हम तुमको लंका, अभी इसने कहा ही नहीं कि मेरा राज्याभिषेक करो मुझे राजा बनाओ, तो कह रहे पहले मेरे मन में वासना थी अब मेरे कुछ भी नहीं है, अब तो केवल आप मुझे भक्ति दो। भक्ति तो देते नहीं भगवान, कहते लाओ ला जड़ लाओ समुद्र का जड़ लाओ। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, तेरी तो इच्छा नहीं है पर मेरी इच्छा हो गई। मोर दरो मैं मोर दरस अमोघ जग माही, संसार में मेरे दर्शन होते हैं ना वो कभी व्यर्थ नहीं होते। अस कही राम तिलक ते ही सारा और सुमन वृष्टि नव भई अपारा। उसका राज्याभिषेक कर दिया भगवान ने, हमने तुमको लंका का राजा बना दिया। देखो भगवान ने ऐसी कृपा सुग्रीव पर नहीं की, सुग्रीव पर नहीं की, बाली के मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया है। लेकिन यहाँ रावण के रहते रहते विभीषण को, क्योंकि सुग्रीव की साधना में ऐसी शरणागति नहीं थी, सुग्रीव की साधना में ऐसी शरणागति नहीं थी। सुग्रीव के मन में इच्छा थी कि मेरा संकट दूर हो, उसके मन में इच्छा थी। विभीषण के ये नहीं थी कि मेरा कोई संकट दूर हो। रावण ने कहा कि उनके साथ मिलकर के नीति सुनाओ उनको, तो विभीषण जी रावण के कहने से आए कि मैंने कहा कि तुम भगवान की शरण में जाओ, मेरे कहने से तुम नहीं आए, लेकिन तुमने मुझे लात मार के भी भगवान की शरण में जाने के लिए कहा, तो तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, मुझे तो वही काम करना चाहिए। माने रावण को विभीषण ने बड़े प्रेम से निवेदन किया था कि भगवान की शरण में जाओ, रावण नहीं गया। और वही रावण विभीषण के लात मारते हुए कहता चला जा उनकी शरण में, हाँ ये बात आपकी बहुत अच्छी है, जो मैं कह रहा था वो आपने कही, मैंने नम्रता से कही आपने लात मार के कही, लेकिन मैं आपकी बात का पालन करूंगा। ऐसे ही विभीषण जी थे, सुग्रीव जी ऐसे नहीं थे। सुग्रीव जी विषयी भक्त हैं, भगवान के विषयी भक्त, और ये विभीषण जी हैं ये भगवान के शरणागत भक्त हैं। इसीलिए विभीषण सुग्रीव जी ने भगवान में कुछ परीक्षा लेने की दृष्टि आई, कोई परीक्षा नहीं ली विभीषण, तरीका है अपना अपना भाई। शरणागत भक्त होता है वो अपना कोई काम भगवान से करवाना नहीं चाहता, भगवान ने उसका राज तिलक कर दिया। अल्लो साहब लंका में आकर के तो हम कर नहीं सकते, और तुम्हारा राज तिलक करना जरूरी है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे दीने राज अखंड। विभीषण जी महाराज कैसे थे, तो रावण के क्रोध रूपी अग्नि में हरदम जल रहे थे, ऐसे क्रोध में जल रहे थे, और बिचारे बड़े भयभीत हुए हुए भय से जो उनके ऐसे से उस सांस निकलते थे वो उस आग को बढ़ाने वाली बात थी। उसमें विभीषण जी जल रहे थे, भगवान ने उसको आग में से बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया। एक बात तो ये है। अच्छा रावण को जो ये राज्य मिला है ये क्या मिला है, ये भगवान शंकर की कृपा से मिला, तो भगवान शंकर ने रावण पर कृपा की उसको राज्य मिला, क्योंकि भगवान शंकर के पास भोले भाले सीधे साधे भगवान ओम नमः शिवाय सिर काट करके भगवान के चरणों में रख दिया, ओम नमः शिवाय दूसरा सिर रख दिया। अब ओम नमः शिवाय करके रखता है भगवान शंकर के दिलाओ तुम्हारे और सिर पैदा हो जाएंगे। उसको वरदान भी था। तो रावण ने देखा कि सिर चाहे काटो ये तो सिर तो मेरे और भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर को खुश कर लूंगा। भगवान शंकर बोल क्या जाए, बस महाराज मेरा लंका के राज्य में किसी प्रकार आफत में आए। भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हारी जो एक बात है, तुमने कहा था ना कि ब्रह्मा जी से कि मुझे मनुष्य और बंदरों से तो भय है ही नहीं, औरों से मुझे सब प्रकार से रक्षा मिले, तो ठीक है हम भी ब्रह्मा जी के वरदान के साथ हैं। तो जो संपति शिव रावण ही दीन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रघुराम जी को देते हुए संकोच, अरे तूने तो मुझे अपना सर्वस्व दे दिया, तेरे पास जो कुछ था वो दे दिया, और मैंने तुझे लंका का राज्य तो दिया है। बहुत संकोच हुआ राम जी को, तूने जो चीज दी है, प्रेम दिया मुझे, मेरे शरणागत हुआ, तेरी चीज बड़ी है कि मैंने तुझे राज्य दिया ये बड़ी है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई भगवान के भजन कर्म में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके भगवान के भजन में नहीं लगते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु है। ते नर पशु बिनु पूंछ बिसाना। भगवान तो इतने अपनाने के लिए तैयार है कि शत्रु का भाई है उसको भी छाती से लगा लेते हैं। तो भगवान जो है शत्रु के भाई को भी अपने छाती से लगा सकते हैं। हम तो कोई भगवान के शत्रु तो है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के प्रभाव को न जान करके भजन नहीं करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और विश्वास देखो, भगवान ने विश्वास किया। भगवान ने कहा अच्छा विभीषण जी, ये समुद्र को पार करना है, क्या करें? बोलो बोलो। सुन कपीस लंकापति बीरा कई विधि तरी जरदि गंभीरा। क्यों महाराज, क्या आप ये देखो लहर उठी और इस लहर के अंदर ही कितना बड़ा 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 मगरमच्छ आया। ये देखो तिमिंगल आया, तिमिंगल संकुल मकर उरग झस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। कैसे पार हो बताओ। भगवान ने तत्काल विश्वास किया इस पर। तो हाथ जोड़ते हुए विभीषण कहता है हे महाराज, आपके बाण तो ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों समुद्रों को सुखा देने में समर्थ है, फिर भी महाराज नीति ये बोलती है कि सागर आपका पूर्वज है, आपको इसके सामने विनती करनी चाहिए। और बिना प्रयास ही ये सब लोग यहां से लंका की तरफ प्रस्थान करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। भगवान है शाबाश, सखा कही तुम नी की सुहाई, तुमने बहुत अच्छी बात कही। करिए देव जो हुई। देखो भगवान की एक बात देखो, भगवान के मन के विपरीत बात भी बोलते हैं ना, तो भगवान सीधी बात नहीं काटते हैं। सुग्रीव ने कहा महाराज इस पर विश्वास नहीं करना, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि शत्रु का भाई है, हमारे यहाँ भेद लेने आया है। भगवान ने कहा सखा नीति तुम नी की बिचारी, तुमने नीति की दृष्टि से बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग क्या करते हैं, जरा सी हमारे मन नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना है। भगवान ये भी कह सकते नहीं सुग्रीव नहीं छोटे छोटे ये मेरे भगत है, पर भगवान दिल दुखा करके किसी बात को बात के सामने अपनी बात नहीं रखते। तुम्हारी एक दृष्टि से सही है और सही भी है। देखो जो आदमी बोलता है वो अपनी दृष्टि से सही बोलता है, अपनी दृष्टि से। देखो भगवान ने उसका भी आदर किया और यहाँ भी कहा सखा कही तुम नी की उपाय, करिए दैव जो हो। अब देखो भाग्य है, भाग्य भी सहायता करेगा तो आपकी बात बहुत अच्छी है। लक्ष्मण ने ये महाराज भाग्य को कहां बीच में ले आया, नाथ दैव कर कवन भरोसा। एक बात है, विभीषण जी के शरणागति के समय में लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं कहा कि लक्ष्मण जी भगवान का स्वभाव जानते थे। भगवान का स्वभाव है शरणागत का, ये त्याग नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी बाप पर बिगड़ गए, लक्ष्मण जी भरत पर बिगड़ गए, लक्ष्मण जी किस पर नहीं बिगड़े, जो जरा सा विवाद बिगड़ गए। लक्ष्मण जी को तो यहाँ बिगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए बड़ा अच्छा मौका मिला था, जो भरत को नहीं छोड़े और दशरथ जी को नहीं छोड़े, वो आज विभीषण के ऊपर इतना जल्दी भरोसा कैसे किया। लक्ष्मण जी जानते थे कि नहीं, आज विभीषण के यहाँ हमारे बोलने की गुंजाइश नहीं है, क्यों, हम भी तो भगवान के शरणागति तो है। ऐसे दोष बता बता करके भगवान से अलग करने लगेंगे तो हम भगवान के पास कैसे टिक पाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ये दैव का भरोसा मत कीजिए, आप तो कह रहे हैं विभीषण जी ने कहा ये बात अच्छी है, लगाओ बाण सोखो समुद्र को, पुरुषार्थ का भरोसा कीजिए। महाराज ये क्या करते हो। भगवान ने कहा, देखो मौका आने पर तुम्हारी बात भी सही है। अब देखो भगवान करते अपने हिसाब से, किसी को गलत बता करके नहीं करते। लक्ष्मण को देख करके भगवान हंसे और हंस करके भगवान ने कहा, ऐसे ही कर, धरो मन धीरा थोड़ा धीरे, तुम कहते हो ना ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करें, पर इसका थोड़ा मौका आने दो। अस कही प्रभु अनुजई समझाई और सिंधु समीप गए रघुराई। भगवान समुद्र के एकदम किनारे के वहां जाकर के एक दूरवा का आसन, दूब का आसन लगाया, उस पर विराजमान हो गए। अब लंका में क्या खलबली होती है इसका प्रसंग आगे चलता है।
जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 जय सीताराम 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 जय
सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय पवन सुत हनुमान की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय।